समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुबह के 7:23 और 23 सेकंड का समय और दिन अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस का। जी हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज इंटरनेशनल टी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है, जो प्रत्येक वर्ष 21 मई को मनाया जाता है। पहले यह दिवस विश्वभर में हर साल 15 दिसंबर को विभिन्न चाय उत्पादक देशों द्वारा मनाया जाता था। भारत की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित कर दिया, क्योंकि दरअसल अधिकतर चाय उत्पादक देशों में गुणवत्तापूर्ण चाय उत्पादन का सीजन मई में ही शुरू होता है। वेल सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मंगलवार के एक नए दिन की एक नई सुबह में आइए शुरू करें समाचार मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, जिसमें होते हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं मेट्रो समाचार, मौसम का हाल, इतिहास के कुछ रोचक पन्ने और समाज के कुछ विशेष महानुभावों की पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन के बारे में जानकारी। तो स्वीकार कीजिए आप ही के अपने रवि कपूर और शेफाली सिंह, हम दोनों का नमस्कार।
Hello Ravi and a very warm welcome to all our listeners tuned in to Akashvani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashvani network. So today we bring you our ever exciting daily news magazine program Aaj Savere, wherein over the next half hour we will bring you the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is 21st of May. So let's begin with the headlines first.
बिल्कुल शेफाली, लेकिन उससे पहले हम अपने श्रोताओं को एक और जानकारी भी दे दें कि आज राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस भी है। तो आतंकवाद के खतरे से मातृभूमि की रक्षा में अपना जीवन बलिदान करने वाले सभी वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला मुख्य समाचारों का।
इंडिया हैज अनाउंस्ड वन डे स्टेट मॉर्निंग टुडे एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट ऑन द डेथ ऑफ ईरान्स प्रेसिडेंट डॉ सैयद इब्राहिम रईसी एंड फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाया इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश। द नेशनल फ्लैग विल बी फ्लोन एट हाफ मास्ट थ्रू आउट द कंट्री टुडे ऑन ऑल बिल्डिंग्स वेयर द नेशनल फ्लैग इज फ्लोन रेगुलरली। देयर विल बी नो ऑफिशियल एंटरटेनमेंट ऑन द डे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉ एस जयशंकर हैव एक्सप्रेस्ड कंडोलेंसेज एट द डिमाइज ऑफ डॉ सैयद इब्राहिम रईसी and Hussein Amir Abdullahia. In their messages, they noted the important role the two leaders have played in strengthening the India-Iran relations.
लोकसभा चुनाव के शेष दो चरणों के लिए प्रचार तेज हो गया है। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता अपनी पार्टी के लिए समर्थन जुटाने के लिए जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आज बिहार और उत्तर प्रदेश में जनसभाएं करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज झारखंड में प्रचार करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हरियाणा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे।
A total of 60.09% of voter turnout was recorded in the fifth phase of Lok Sabha elections yesterday. In this phase, 49 parliamentary constituencies spread over 6 states and 2 union territories went to polls. Polling remained largely peaceful, with voters from all walks of life participating enthusiastically despite the heatwave condition in several parts of the country. According to Election Commission, Baramulla in Jammu and Kashmir recorded the highest percentage of voter turnout with 56.73%, while Bihar saw a voter turnout of 54.85%, Jharkhand saw a poll percentage of 63.07%, Ladakh recorded 69.62% of voter turnout, Maharashtra recorded around 54.29%, Odisha saw 67.59% of voter turnout, Uttar Pradesh recorded around 57.79%, and West Bengal saw a turnout of around 74.65%. A total of 695 candidates were in the electoral fray in this phase of elections. The voting took place peacefully on 14 seats of Uttar Pradesh, 13 of Maharashtra, 7 of West Bengal, 5 each of Odisha and Bihar, 3 seats of Jharkhand, along with 1 each in Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. With the conclusion of this phase, polling for general elections is now completed in 25 states and UTs and 428 parliamentary constituencies. Polling is also complete for state legislative assemblies of Arunachal Pradesh, Sikkim, Andhra Pradesh and 63 assembly seats of Odisha State Assembly.
प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में आज 25,000 से अधिक महिलाओं के साथ बातचीत करेंगे। श्री मोदी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में मातृशक्ति सम्मेलन के दौरान गृहिणियों, डॉक्टरों, शिक्षकों, व्यवसायियों, वकीलों और खिलाड़ियों के साथ वार्ता करेंगे। एक घंटे के इस सम्मेलन के दौरान उद्घोषक सहित अन्य सभी जिम्मेदारियां महिलाएं संभालेंगी। प्रधानमंत्री वाराणसी से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन ने अजय राय को मैदान में उतारा है। वाराणसी में 1 जून को मतदान होगा।
In response to the overwhelming turnout of devotees during the Char Dham Yatra in Uttarakhand, offline registration will be suspended until May 31st. Chief Minister Pushkar Singh Dhami issued these instructions during a meeting in Dehradun yesterday regarding the Char Dham Yatra, directing authorities to devise guidelines for tour operators to manage the influx of devotees. Meanwhile, the movement of pilgrims continues smoothly across all 4 dhams of the state, with approximately 7 lakh devotees having visited Kedarnath, Badrinath, Gangotri and Yamunotri Dham in the past 10 days.
प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में सीवान संसदीय क्षेत्र में पूर्वी चंपारण में मोतिहारी और गोरिया कोठी में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। श्री मोदी 2 दिन के बिहार दौरे पर कल शाम पटना पहुंचे। श्री मोदी ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी को पुष्पांजलि अर्पित की। सुशील मोदी का हाल ही में निधन हो गया था। प्रधानमंत्री पटना के राजेंद्र नगर में उनके घर भी गए और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
Hailing the excellent relationship between Colombo and New Delhi, Sri Lanka Foreign Minister Ali Sabri has said that India is marching towards economic glory, which is not only good for the region but also for countries like Sri Lanka. Talking to a news agency, he said Sri Lanka is also looking at a lot of investment in ports, renewable energy and other infrastructure, which makes it a win-win situation for both nations. Mr. Sabri said that they have an excellent relationship and it is almost all-time high. He said that there is a multifaceted partnership between the two countries. Shedding light on the civilizational ties shared between India and Sri Lanka, the minister noted that all the communities in the island nation are influenced by Indian civilization. He said, all communities, Buddhists, Sinhalese, Tamils, Muslims, all have been influenced by the Indian civilization. Mr. Sabri said, he sees a lot of partnership going forward and this Ramayan trail may be a very good beginning for Sri Lanka to further spur the already good tourism and people-to-people connection.
बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए नोएडा और गाजियाबाद में जिलाधिकारियों ने प्राइमरी से लेकर 8वीं तक के सभी विद्यालयों की छुट्टी कर दी है। प्रशासन ने पत्र लिखकर इसकी सूचना सभी स्कूलों को जारी की है। नोएडा में रविवार को पारा तकरीबन 46 डिग्री तक पहुंच गया था। मौसम विभाग ने इसके और बढ़ने की संभावना व्यक्त की है।
India Meteorological Department, IMD, has issued a red alert for severe heatwave conditions over the plains of northwest India, north Madhya Pradesh and Gujarat state for the next 3 days. The IMD said heatwave to severe heatwave conditions are likely to prevail over Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi, West Rajasthan, West Uttar Pradesh, East Rajasthan and northwest Madhya Pradesh till 24th of this month. The weather department also forecasts a gradual rise of about 2 to 3 degrees Celsius over many parts of northwest and central India for the next 4 days. Yesterday, maximum temperatures were in the range of 43 to 47 degrees Celsius over Haryana, Chandigarh, Delhi, Rajasthan, Punjab, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Gujarat. Bihar, Chhattisgarh, Maharashtra, Vidarbha region and plains of Himachal Pradesh and Uttarakhand recorded maximum temperatures of around 40 to 42 degrees Celsius. Pre-monsoon showers have intensified in the southern parts of India with the advancement of the southwest monsoon into some parts of the Maldives and the Comoran area, the South Bay of Bengal, the Nicobar Islands and the South Andaman Sea. An orange alert for heavy rainfall has been issued for Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Mahi, coastal and south interior Karnataka till Friday. These regions are expected to witness heavy to very heavy rainfall, while Kerala will experience extremely heavy rainfall till tomorrow. The IMD also forecasts the formation of a low-pressure area over southwest Bay of Bengal around Wednesday.
तीरंदाजी विश्व कप 2024 का दूसरा चरण आज से दक्षिण कोरिया के येशियोन में शुरू हो रहा है। भारत ने इसमें वही 16 सदस्यीय टीम भेजी है जिसने पिछले महीने चीन के शंघाई में पहले चरण में हिस्सा लिया था। भारतीय दल पहले चरण में 5 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 8 पदकों के साथ चैंपियन टीम के रूप में उभरा। ये तीरंदाजी विश्व कप के किसी एक संस्करण में भारत की सर्वोच्च पदक तालिका थी। 2024 तीरंदाजी विश्व कप का दूसरा चरण रविवार को समाप्त होगा। प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का तीसरा चरण तुर्की के अंताल्या में आयोजित किया जाएगा, जबकि अंतिम चरण मेक्सिको के लास्काला में आयोजित किया जाएगा।
एंड इन स्पोर्ट्स, सनराइजर्स हैदराबाद विल फेस कोलकाता नाइट राइडर्स इन क्वालिफायर 1 एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद टुडे। द मैच विल बिगिन एट 7:30 दिस इवनिंग। द सेकेंड क्वालिफायर विल बी प्लेड बिटवीन राजस्थान रॉयल्स एंड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एट द सेम वेन्यू टुमारो। द फाइनल मैच विल बी प्लेड ऑन संडे। In the World Para Athletics Championships, India's Deepthi Jivanji bagged the gold medal in the women's 400-meter T20 category race in Japan. She also set a new world record with a time of 55.07 seconds, surpassing the previous record of 55.12 seconds set by Brianna Clark of USA. Asa Launder of Turkey won the silver, while Lizanchela Angulo of Ecuador took the bronze. In the men's F56 category discus throw, India's Yogesh Kathunia clinched the silver medal with an effort of 41.80 meters. India currently holds 4 medals in total, including 1 gold, 1 silver and 2 bronze.
To ye the ab tak ke kuch mukhya samachar. Aur ab Chennai, Bengaluru aur Hyderabad ke samacharon ki jankari de rahi hain Shivali Singh.
Let's start with Chennai. The government Stanley Medical College has said that 7 out of 10 persons screened were overweight or obese. In a health screening camp held on Monday, 13% were reportedly having hypertension and 16% diabetes. 11,780 persons have been screened since 2022 under the Master Health Checkup Scheme, paying ₹1,000 for investigations including blood tests and scans. Analysis showed 2,948 persons with hypertension and 3,245 with diabetes. In total, doctors had screened 11,780 people, including 6,198 women, since 2022 under the Master Health Checkup Scheme. Health Secretary Gagandeep Singh Bedi said that the camps are conducted to educate people about prevention and management of hypertension and its effects on the heart, kidneys, brain and eyes. He said that one must reduce their salt intake and increase intake of vegetables to prevent hypertension and keep the disorder under control. Another news from Chennai, Geri Care Hospital launched a cat lab exclusively for senior citizens in Adambakkam at Chennai. This lab is equipped with diagnostic imaging equipment to enable tests and procedures including ablation, angiogram, angioplasty and implementation of pacemakers and ICDs. The hospital has also launched an inaugural cardiac health check package for senior citizens covering important blood markers. Now with coming to Bengaluru Metro News, yesterday morning the Central Crime Branch CCB raided an alleged rave party at GR Farmhouse near Electronic City in Bengaluru. The raid conducted at 3 a.m. was prompted by suspicions of drug abuse, according to the police reports. The event, organized by a Hyderabad-based event planner, extended well beyond permitted hours, drawing the attention of anti-narcotics officials. During the inspection, the CCB team discovered a stash of drugs, including 17 MDMA tablets and cocaine. Over 100 attendees were present, including 25 young women from Andhra Pradesh and Bengaluru, some of whom had reportedly been flown in specifically for the occasion. Adding to the intrigue, the identification card of an Andhra Pradesh MLA was found in a luxury car parked near the venue, along with several other high-end vehicles. The party, planned to run from evening until Monday morning, was clandestinely organized on the outskirts of the city. Following the raid, 5 individuals, including the party organizer and 3 drug peddlers, were arrested. And now, Hyderabad Metro. The Telangana State Cabinet has decided in favor of conducting further studies and tests on the Medigada, Anaram and Sundila barrages, the key components of the Kaleshwaram lift irrigation project in the state. Briefing the media after the cabinet meeting yesterday, State Revenue Minister P. Srinivas Reddy said three organizations of the center were identified for this task. The physical and technical aspects of each barrage will be studied by two of the organizations identified. He said the kind of repairs to be taken up will be decided, taking their recommendations and findings into consideration. He further said the project authorities were asked to explore the possibility of lifting water from the barrages to meet irrigation needs of farmers in the command area of the project by putting up simple rock-filled cabin structures in place of the damaged structures with nominal expenditure by taking into consideration the recommendations of the National Dam Safety Authority, NDSA. And now for news from Delhi, Mumbai, Kolkata, we will move over to you, Ravi.
Shukriya, Shefali. Shuruaat Delhi se karte hain. Rajdhani Delhi mein prachar zoron par hai. Rajdhani mein chunav prachar 23 Mai ki shaam ko samapt ho jayega. दिल्ली की सभी सात लोकसभा सीटों पर मतदान 25 मई को होगा। कल भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया। आम आदमी पार्टी की ओर से पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पटपड़गंज क्षेत्र में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। श्री केजरीवाल ने शाहदरा और गांधीनगर क्षेत्र में भी नुक्कड़ सभाएं की। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कल शाम बवाना गांव में देहात महापंचायत को संबोधित किया। उत्तर पश्चिम दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी उदित राज ने नांगलोई और टीकरी कला में रोड शो किया। लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में वृद्धजनों और दिव्यांगजनों के लिए घर से मतदान के चौथे दिन कुल मिलाकर 4,774 लोगों ने वोट डाला। चुनाव आयोग के अनुसार सबसे अधिक पश्चिमी दिल्ली में कुल 1,148 लोगों ने मतदान किया। वहीं सबसे कम उत्तर पूर्वी दिल्ली में कुल 397 लोगों ने मतदान किया। आयोग के अनुसार कुल 5,406 मतदाताओं ने घर से वोट करने के लिए आवेदन किया है। निर्वाचन आयोग ने 85 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों और दिव्यांगों के लिए पिछले सप्ताह नई दिल्ली में मतदान के लिए इस विशेष सुविधा की शुरूआत की थी। राष्ट्रीय राजधानी में 1,75,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग लोकसभा चुनाव के लिए मतदान करने के पात्र हैं। इनमें 97,000 के करीब 85 साल से अधिक के वरिष्ठ नागरिक और 76,000 से अधिक दिव्यांग शामिल हैं। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर यात्रियों को जल्द ही नमो भारत ट्रेनों की तेज और आरामदायक यात्रा के अलावा खरीदारी, भोजन और बैंकिंग सेवाओं जैसी सुविधाएं मिलेंगी। ये सुविधाएं आरआरटीएस स्टेशनों के परिसर के भीतर और निकास क्षेत्रों के आसपास वाणिज्यिक स्थानों पर उपलब्ध होंगी, जिससे यात्री सुविधा में वृद्धि होगी। पहले चरण में ये सुविधा साहिबाबाद, गुलधर और दुहाई स्टेशनों पर उपलब्ध होगी। इसके लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं, जिसकी अंतिम तारीख 4 जून है। वर्तमान में साहिबाबाद से लेकर मोदीनगर नॉर्थ के बीच 34 किलोमीटर के सेक्शन में 8 स्टेशनों पर नमो भारत ट्रेन सेवाएं संचालित हैं। इस सेक्शन में साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई, दुहाई डिपो, मुरादनगर, मोदीनगर साउथ और मोदीनगर नॉर्थ स्टेशन शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मुंबई की ओर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार बिना किसी जाति या धार्मिक पूर्वाग्रह के सभी नागरिकों के कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में श्री मोदी द्वारा किए गए विकास कार्य और विकसित भारत का उद्देश्य भारत और उसके नागरिकों के लिए उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करना है। श्री शिंदे महाराष्ट्र में पांचवें और अंतिम चरण के मतदान में अपना वोट डालने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने अपने पिता संभाजी, पत्नी लता, बेटे और कल्याण लोकसभा उम्मीदवार श्रीकांत और उनकी पत्नी वृशाली के साथ ठाणे के वागले एस्टेट में एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मुंबई से अब कोलकाता की ओर। पश्चिम बंगाल में सोमवार को मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। 7 संसदीय क्षेत्रों में मतदान हुआ, जिसमें 1,25,00,000 से अधिक मतदाता शामिल हुए। 14 महिला उम्मीदवारों सहित 88 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। मतदाताओं को प्रभावित करने, पोलिंग एजेंटों को बाहर निकालने और राजनीतिक दलों के समर्थकों के बीच मारपीट की कुछ घटनाएं सामने आईं। बारिश के कारण दोपहर में कुछ देर के लिए मतदान बाधित हुआ, लेकिन जल्द ही मतदान बहाल हो गया। पश्चिम बंगाल में सोमवार को 76% से ज्यादा वोट दर्ज किए गए। तो ये थे अब तक के कुछ मेट्रो समाचार। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे रवि और शेफाली के साथ। और कार्यक्रम आज सवेरे में अब बात मौसम की, तो सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का मौसम। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आसमान साफ रहेगा, लेकिन लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुंबई में आमतौर पर मौसम साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। शेफाली,
यस। And in Chennai, it is expected to have a partly cloudy sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature was 28 degrees Celsius and maximum will be around 35 degrees. Bengaluru is expected to have a generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The minimum temperature will be 21 degrees Celsius and maximum will be around 29 degrees. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky. The temperature will hover between a minimum of 24 degrees and a maximum of 35 degrees Celsius.
और आइए अब पलट लेते हैं इतिहास के पन्नों को, जान लेते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या-क्या हुआ।
Every year on 21 May, India celebrates Anti-Terrorism Day to commemorate the death anniversary of former Prime Minister Rajiv Gandhi, who was assassinated by a suicide bomber of the LTTE at Sripuram Bridur, a village now known as Chennai, on 21 May 1991. National Anti-Terrorism Day is observed to educate people about the negative impact of terrorism and violence on society and the nation. The day also aims to promote peace and harmony in the country. In 1881, on this day, Clara Barton founded the American Association of the Red Cross, later the American Red Cross. The American Red Cross has been dedicated to serving the people in need. And here's a trivia for football lovers. In 1904, FIFA, the world governing body of association football, was founded. The Federación Internacional de Fútbol Asociación is responsible for the organization of the World Cup, which is one of the world's most viewed sporting events. In 1927, Charles Lindbergh completes the first solo non-stop transatlantic flight. What a feat! And in 1932, 5 years to the day that American aviator Charles Lindbergh became the first pilot to accomplish a solo non-stop flight across the Atlantic Ocean, female aviator Amelia Earhart becomes the first pilot to repeat the feat, landing her plane in Ireland after flying across the North Atlantic. Earhart traveled over 2,000 miles from Newfoundland in just under 15 hours.
1981 में आज के दिन पियरे मोरो फ्रांस के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। 1994 में आज के दिन दक्षिणी यमन द्वारा उत्तरी यमन से अलग होने की घोषणा की गई।
एंड इन 1994 सुष्मिता सेन मेड हिस्ट्री बाय ब्रिंगिंग होम द मिस यूनिवर्स क्राउन टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस डे इन 1994। व्हाट अ ग्रेसफुल एंड एलिगेंट लेडी शी इज।
बिल्कुल। 1998 में आज के दिन 32 वर्षों तक लगातार इंडोनेशिया पर शासन करने वाले राष्ट्रपति सुहार्तो का त्यागपत्र हुआ। सन 2002 में आज के दिन बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति एचएम इरशाद को 6 महीने कारावास की सजा हुई। 2003 में आज के दिन विश्व के 190 से भी अधिक देशों ने तंबाकू के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संधि को जिनेवा में मंजूरी दी। 2008 में आज के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ की योजना के अंतर्गत 15 देशों की वायुसेनाओं के 90 अधिकारियों का एक साझा टेबल अभ्यास हैदराबाद में आरंभ हुआ। 2008 में आज ही के दिन नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिकी विज्ञानी विलिस ई लैंग का निधन हुआ। 2008 में आज ही के दिन मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद के पुत्र दातुक मोकजानी महातिर ने सत्तारूढ़ दल यूएमएनओ से इस्तीफा दिया। और 2010 में आज ही के दिन उड़ीसा तट पर बंगाल की खाड़ी में भारतीय सेना के जंगी जहाज रणवीर से भारतीय नौसेना ने सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
It is also worth mentioning that the World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development is held every year on 21st May. It celebrates not only the richness of the world's cultures, but also the essential role of intercultural dialogue for achieving peace and sustainable development. The United Nations General Assembly first declared this World Day in 2002, following UNESCO's adoption of the 2001 Universal Declaration on Cultural Diversity, recognizing the need to enhance the potential of culture as a means of achieving prosperity, sustainable development, and global peaceful coexistence.
और शेफाली, अब समय हो गया है कुछ प्रमुख व्यक्तियों की पुण्यतिथियों, जयंतियों और जन्मदिन के बारे में अपने श्रोताओं को जानकारी देने का। तो इस क्रम में आज सबसे पहला नाम है जानकी देवी बजाज का, जो गांधीवादी जीवन शैली की कट्टर समर्थक थीं। आपका जन्म हुआ था 7 जनवरी 1893 को, लेकिन आपका निधन हुआ 21 मई 1979 को। जानकी देवी बजाज ने कुटीर उद्योग के माध्यम से ग्रामीण विकास में काफी सहयोग किया। वे एक स्वावलंबी महिला थीं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया था। उनके व्यक्तित्व में एक विरोधाभास सा था। जानकी देवी बजाज जहां दानी, मितव्ययी और कठोर थीं, वहीं दूसरी ओर दयालु भी बहुत थीं। जानकी देवी बजाज के आजीवन किए गए कार्यों को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार ने सन 1956 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। भारत में पहली बार 17 जुलाई 1928 के ऐतिहासिक दिन को जानकी देवी अपने पति और हरिजनों के साथ वर्धा के लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंची और मंदिर के दरवाजे हर किसी के लिए खोल दिए। और आगे बढ़ते हैं।
जी बिल्कुल, अब बात करते हैं फेमस एक्टर मोहनलाल की। सो टुडे इज द बर्थडे ऑफ मोहनलाल विश्वनाथन, अ रिनाउंड इंडियन एक्टर, प्लेबैक सिंगर, फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर who works in Malayalam film industry predominantly, besides also having appeared in Tamil, Hindi, Telugu and Kannada films. The Government of India has honoured him with Padma Shri and Padma Bhushan for his contributions to Indian cinema. Mohanlal has also won 5 national film awards. Interestingly, Mohanlal's first role was as a 6th grader for a stage play called Computer Boy, in which he played a 90-year-old man. Mohanlal, along with actor and scriptwriter Srinivasan, who played his sidekick in several films, showcased the angst of unemployed educated Malayali youth forced to adapt to hostile environments in many realistic social satires.
और शिफाली, अब बात कर लेते हैं प्रसिद्ध पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता रहे सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में, जिनका जन्म तो हुआ था 9 जनवरी 1927 को, लेकिन इन्होंने इस दुनिया से विदा ली 21 मई 2021 को। इन्हें सन 1984 के राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा के अनुसार पेड़ों को काटने की अपेक्षा उन्हें लगाना अति महत्वपूर्ण है। सन 1949 में मीराबेन व ठक्कर बापा के संपर्क में आने के बाद सुंदरलाल बहुगुणा दलित वर्ग के विद्यार्थियों के उत्थान के लिए प्रयासरत हो गए थे तथा उनके लिए टिहरी में ठक्कर बापा हॉस्टल की स्थापना भी की। दलितों को मंदिर प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए भी उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया था। सुंदरलाल बहुगुणा को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जिनमें शामिल हैं पद्मश्री, पद्म विभूषण, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, राइट लाइव लीहुड पुरस्कार चिपको आंदोलन के लिए, जमुनालाल बजाज पुरस्कार और सामाजिक विज्ञान के डॉक्टर की मानद उपाधि IIT रुड़की द्वारा।
और अब बॉलीवुड सिनेमा के चाहने वालों के लिए है हमारी नेक्स्ट पर्सनालिटी। यस, टुडे इज द बर्थडे ऑफ आदित्य चोपड़ा, एन इंडियन फिल्म मेकर, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर, फिल्म प्रोड्यूसर, राइटर एंड स्टूडियो एग्जीक्यूटिव। ही इज द करंट चेयरमैन ऑफ इंडियाज मल्टीनेशनल फिल्म मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कॉन्ग्लोमरेट यश राज फिल्म्स, पॉपुलरली नोन एज YRF. Aditya Chopra became an avid film buff from his early childhood, and while his schooling in film started with viewing films, his college and university were his father Yash Chopra's home productions. He started working as an assistant to his father in Chandni, Lamhe and Dar. At the mere age of 23, he made his directorial debut with Dilwale Dulhaniya Le Jayenge, DDLJ, which is still running theatrically, though it was originally released on 20 October 1995.
और इसके अलावा शिवाली, उन्होंने और जो फिल्मों का निर्माण किया उनमें शामिल हैं दिल तो पागल है, मेरे यार की शादी है, मुझसे शादी करोगी, साथिया, हम तुम, धूम, वीर जारा, बंची और बबली, सलाम नमस्ते, फना, रब ने बना दी जोड़ी, वगैरह वगैरह वगैरह। और अब श्रोताओं से विदा लेने का समय हो गया है। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। और चलते चलते आज का विचार कि बादाम की तरह होता है धोखा, जितना खाओगे उतनी अकल आएगी। इसी विचार के साथ इजाजत दीजिए रवि कपूर और शेफाली सिंह को आज सवेरे कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की।
जी, सो स्टे ट्यून फॉर समाचार प्रभात आवर हिंदी न्यूज बुलेटिन विच इज कमिंग अप नेक्स्ट फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ ग्रेट डे।
नमस्कार।